सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। पापा नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले।
दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में हिंदी के इस समय विकास और बढ़त पर आज हमने बात करने के लिए बुलाया है अनुश्री जैन को, जो VSL में हिंदी अध्यापिका हैं। अनुश्री जी, SBS के हिंदी कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
नमस्ते अमित जी, और आपके श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
अनुश्री जी, मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगा कि VSL की जो क्लासेस होती है उनका फॉर्मेट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है?
जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं प्रेप से लेके 12वीं कक्षा तक, वो हिंदी को एक विषय के तौर पर चुन सकते हैं, और क्लासेस होती हैं ज्यादातर सैटरडे को, और कुछ एक आधी जगह है जहाँ पर वीकेंड पे भी होती है, वीकडेज पे भी होती है, जैसे ग्लेन वेवरली में मंगलवार को स्कूल के बाद होती है।
जी, अच्छा, अब SBS ने अपना एक लैंग्वेज कंपटीशन चलाया हुआ है हिंदी के विकास के और बढ़त को देखने के लिए, मापने के लिए। आपको क्या लगता है कि इस तरीके के लैंग्वेज कंपटीशन जो होते हैं उनका क्या महत्व है ऑस्ट्रेलिया में?
मुझे लगता है कि इससे बहुत प्रोत्साहन मिलता है, बच्चों को अपने पाठ्यक्रम से अलग कुछ करने को मिलता है, और आई थिंक ऐसे प्रतियोगिताएं ज्यादा होते रहनी चाहिए, तो इससे हिंदी का विस्तार तो होगा और बच्चों की रुचि भी बढ़ेगी।
आपने रुचि की बात की, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जो आपकी हिंदी कक्षाएं होती हैं उसमें बच्चों की रुचि, अगर आपके पास हर एज ग्रुप के बच्चे आ रहे हैं तो उनकी रुचि को मेंटेन रखना, सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता होगा आपके लिए, तो किस तरीके के टूल्स यूज करती हैं आप?
अमित जी, परिवर्तन बहुत आते रहते हैं, क्योंकि एक तो हमारी कक्षाओं में संख्या पे निर्भर करता है कि मतलब कितनी कक्षाएं होंगे, कितने अध्यापक होंगे। कभी कभी कोई कोई अध्यापक प्रेप से लेके शायद छठी तक पढ़ा रहे हों, बाकी दूसरे अध्यापक शायद प्रेप से लेके आठवीं तक पढ़ा रहे हैं, पर अभी तक अब हमारे पास थोड़ा ऐसा है कि लगभग चार चार अध्यापक हैं, तो जो जैसे प्रेप से लेके तीन तक पढ़ा रहे हैं, फिर तीन से छः और छः से नौ और फिर VC, इस तरीके से हो रहा है
जी।
तो विस्तार के साथ अध्यापक भी और हैं, और शायद पहले से बहुत बेहतर हो गया है।
आप 17 साल से हिंदी पढ़ा रही हैं ऑस्ट्रेलिया में, और आप इंटरप्रेटिंग सर्विसेज में भी काम कर चुकी हैं और कर रही हैं बल्कि, तो किस तरीके के बदलाव आपने देखे हैं इन 17 सालों में?
एक तो भारत से बहुत अधिक संख्या में लोग आए हैं
जी,
उनको इन सेवाओं के बारे में सुन के बहुत अच्छा लगता है, और उनको इनकी आवश्यकताएं भी होती हैं। आमतौर से मैंने देखा है कि लोगों को जानकारी नहीं होती है, तो जब उनको बतलाया जाता है तो बहुत प्रसन्न होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी श्रोता हैं आपके जो आज इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं
जी,
वो जरूर से आगे लोगों को जानकारी दें कि इस तरीके की हिंदी कक्षाएं उपलब्ध हैं और दुभाषीय सेवाएं भी उपलब्ध हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का इसका लाभ मिल सके।
जी बिल्कुल, मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि 17 साल के एक्सपीरियंस के अलावा अनुश्री जी ने दो किताबें या अभ्यास पुस्तिकाएं भी लिखी हैं। अनुश्री जी, ऑस्ट्रेलिया में हिंदी पे दो अभ्यास पुस्तिकाएं, ये एक मील का पत्थर है अपने आप में ही। मैं जानता नहीं कई और लोगों को जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया हो। कितनी मुश्किलें आई आपको यहाँ पर ये दो किताबें लिखने में?
मेरा बहुत उत्साह था ये किताबें लिखने में, तो इसलिए मुश्किलों को इतना मैंने अनुभव नहीं किया। जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया
जी,
तो मैं अपने तरफ से कुछ ना कुछ बच्चों के लिए तैयार करती थी, और वो जब क्लास में उनका प्रयोग करते करते ही मुझे एक बार प्रेरणा मिली दिनेश श्रीवास्तव जी से कि भी इसको किताब का रूप दिया जा सकता है
जी।
तो उस पे काम किया और बहुत लोगों ने पसंद किया है, और अभी जो माता पिता हैं वो एक बड़े फॉर्मेट में चाहते हैं पढ़ाई, ऐसा नहीं कि हम पेपर पकड़ा दें उन्हें कि ये वर्कशीट कर लाओ वो वर्कशीट कर लाओ
जी।
तो अभी उन लोगों ने भी बहुत अच्छे से इसका स्वागत किया है, और फिर उसी को पहले किताब का रिस्पांस देख के फिर दूसरी किताब लिखी गई, और अब तीसरी की तैयारी है, कुछ और लोग लिख रहे हैं तीसरी किताब
जी। अच्छा अनुश्री जी, आपने बात की माता पिता के इंटरफेरेंस कह लीजिए या इंटरेस्ट की बात क्लासेस में, तो क्या ऑनलाइन और ITC के टूल्स को भी यूज करने के लिए हिंदी कक्षाओं में बढ़ावा दिया जा रहा है यहाँ ऑस्ट्रेलिया में?
मुझे लगता है कि कुछ कुछ चीजें ऑनलाइन बहुत अच्छी उपलब्ध हैं, जहाँ जैसे हमारी कक्षाओं में जो माता पिता या बच्चे जो होते हैं अलग अलग भूमिका पृष्ठभूमि से आते हैं, कोई बंगाली भी हो सकता है, मराठी, गुजराती, दक्षिण भारतीय भी बहुत होते हैं, तो दक्षिण भारतीयों को विशेष तौर से काफी तकलीफ होती है क्योंकि वो खुद नहीं बोलते हैं
जी।
और उनको पढ़ाना का बहुत मन होता है बच्चों को, तो उनके लिए मुझे लगता है कि कुछ कुछ टूल्स ऐसे हैं ऑनलाइन पे जिसके साथ वो बच्चों के साथ बैठे और खुद भी सीखे और उनको भी सिखलाएं वाली बात होती है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि उनके लिए सारी सुविधाएं और रिसोर्सेज उन्हें उपलब्ध कराएं, पर ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है
जी। चलते चलते अनुश्री जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हम बात करते हैं आजकल बाइलिंगुअलिज्म की, द्विभाषी की, पर जैसे मेरा केस है या आपके आसपास भी कई और लोग होंगे जो द्विभाषी नहीं बहुभाषी हो चुके हैं, क्योंकि उनके बच्चों को उनके स्कूलों में एक तीसरी भाषा भी पढ़ने का ऑप्शन दिया जाता है और कई बार वो चौथी भाषा भी सीख सकते हैं अपने हिसाब से। तो ऐसे लोगों को आप क्या टिप्स देंगे कि घर पे माता पिता अपने बच्चों को हिंदी की हेल्प कर सकें?
देखिए, हिंदी तो उनको जरूर से जारी रखनी चाहिए, और अगर बहुभाषी होना बहुत अच्छी बात होती है। अगर मेरे को मिले तो मैं जितनी ज्यादा से ज्यादा भाषा हो सके मैं सीखना चाहूंगी, और बच्चों के साथ चाहे बच्चे जवाब ना भी दें तब भी आप अपना प्रयास जारी रखें और नए नए साधन देखिएगा। आप अगर उनको टीवी देखते हैं या यूट्यूब देखिएगा, अगर उनके साथ बैठ के छोटी सी कोई कहानी देखिएगा, उनके साथ मिलके कोई छोटी सी कहानी बनाइएगा, ऐसा कुछ जिस तरीके से भी उनकी रुचि हो उस तरीके से उन्हें इन्वॉल्व कीजिए, खुद भी उनके साथ लगे। और आपके अध्यापक लोगों को आप अपने आइडियाज दे सकते हैं पेरेंट्स को कि हमारा बच्चा ऐसे बेहतर सीखता है, और उनके साथ सहयोग कीजिए पर जारी रखिए। बच्चे चाहे ना बोलें पर एक टाइम आता है कि आपको लगता है अच्छा मेरा बच्चा इतना भी बोल सकता है, तो वो हमको कभी कभी आश्चर्यचकित कर देते हैं। निराश नहीं होना चाहिए कि बच्चे बोल नहीं रहे हैं।
अनुश्री जी, SBS के हिंदी कार्यक्रम में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद जी।
बीचक दाना दाने ऊपर दाना, बीचक दाना, बीचक दाना।